राजवंशी महल में हर तरफ दौड़धूप मची हुई थी। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। अभिमन्यु अपने कमरे से निकलकर सीधे माँ सा के कमरे में उनसे बात करने गया। अभिमन्यु की बहन अर्पिता भी राजवंशी महल आ चुकी थी। अभिमन्यु उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों माँ सा के साथ बात कर रहे थे। माँ सा ने अर्पिता को अपने बगल में बिठाते हुए कहा, हम कल ही होटल के लिए निकलेंगे, लेकिन अर्पिता ये याद रखिएगा कि हमने होटल को दो भागों में बांटने के लिए कहा है। एक तरफ लड़की वालों के सारे रीति रिवाज और रस्में होंगी और दूसरी तरफ हम लोगों की सारी तैयारियां। आप दोनों ही देखभाल करेंगी। इप्सिता, हम नहीं चाहते कि शादी में कोई रुकावट आए। अर्पिता और अभिमन्यु ध्यान से अपनी माँ की बात सुन रहे थे। माँ सा ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, दोनों समझ गए ना मेरी बात? अभिमन्यु ने धीरे से सिर हिलाया। अर्पिता ने माँ सा का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ सा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? हम और भाई सा है ना, हम लोग सब कुछ देख लेंगे। आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कियारा अभिमन्यु से बात करने उसके कमरे की तरफ आई। उसने कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, अभिमन्यु भाई सा, क्या आप अंदर हैं? अभिमन्यु ने कियारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अपने कमरे में नहीं था। कियारा कमरे के अंदर आई। उसने फिर से अभिमन्यु को आवाज़ लगाई, अभिमन्यु भाई सा। अंदर आने पर भी जब अभिमन्यु ने जवाब नहीं दिया तो कियारा समझ गई कि शायद अभिमन्यु कमरे में नहीं है। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकलने लगी। उसके चेहरे पर परेशानी और बढ़ती जा रही थी। उसने अपने मन में कहा, आखिर अभिमन्यु भाई सा कहाँ है? हमें उनसे बात करनी है। ये बात जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कियारा जैसे ही अभिमन्यु के कमरे से बाहर निकली, उसकी छोटी बहन अदिति उसके पास आई और बोली, कियारा दी, आप यहाँ हैं, चलिए ना, हमने जो कपड़े ऑर्डर किए थे वे सारे आ गए हैं, चलिए ना, हम दोनों साथ में ट्राई करके देखते हैं। कियारा ने उसकी तरफ देखकर अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, अभी तुम जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। कियारा ने अपनी बहन अदिति से जाने को कहा, लेकिन अदिति ने जिद करते हुए कहा, चलो ना दी, नहीं तो बाद में आप बोलोगी कि जो आपको पसंद है वे सब पहले ही हमने ले लिए, इसीलिए बोल रही हूँ साथ चलने को। एक बार चल के ट्राई कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वैसे भी क्या कर रही हो आप यहाँ पर? इतना बोलते हुए अदिति ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। कियारा ने थोड़ी तेज आवाज में उसे डांटते हुए कहा, अदिति, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? एक बार की बात, जाइए, आपको जो भी लेना है ले लीजिए, हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। जो बच जाएंगे वे हम पहन लेंगे, जो आपको पसंद नहीं आएंगे वे रख दीजिएगा, हमारे लिए कपड़े इतने जरूरी नहीं हैं। कियारा के डांटने पर अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो फिर क्या जरूरी है आपके लिए? आप हमें कुछ बताती नहीं हैं, पता नहीं कहाँ जा रही हैं, जाइए, अब हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। इतना बोलकर वो नाराज होकर चली गई। कियारा अपनी बहन को नाराज नहीं करना चाहती थी और उसे नाराज होते देख वो उसे मनाने उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन जा नहीं पाई, क्योंकि अभी उसके लिए कुछ और जरूरी था, अभिमन्यु से मिलना। इसलिए कियारा सीधे हॉल की तरफ आई। उसने हॉल में खड़े नौकरों की तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों ने अभिमन्यु भाईसा को कहीं देखा है? सबने सिर हिला दिया। कियारा भागते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी वो मुनीम जी से टकरा गई। मुनीम जी ने कियारा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे कियारा बिटिया, इस तरह इतनी हड़बड़ी में कहाँ भागती जा रही हो? कियारा ने कहा, कुछ नहीं मुनीम अंकल, हम अभिमन्यु भाईसा को ढूंढ रहे थे। मुनीम जी ने धीमी आवाज में कहा, अरे कुंवर सा तो रानी सा के कमरे में है। मुनीम जी की बात खत्म होते ही कियारा ने कहा, थैंक यू सो मच मुनीम अंकल। इतना बोलकर वो भागते हुए सीधे मासा के कमरे की तरफ भागी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मासा अर्पिता के साथ कुछ समझाते हुए जा चुकी थी। अभिमन्यु कमरे के बाहर किसी से फोन पर बात कर रहा था। कियारा ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा वो भागते हुए उसके पास आई। अभिमन्यु मुस्कुराया, वो फोन पर बात करता रहा। कियारा उसके फोन रखने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे इंतजार नहीं हो रहा था और वो बेचैनी में इधर उधर देखने लगी। अभिमन्यु ने उसके चेहरे की टेंशन देखकर समझ लिया कि कुछ बात है। वो कियारा के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कोई बात है क्या? कियारा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई सा, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जैसे ही कियारा ने इतना कहा, पीछे से एक नौकर आया और उसने अभिमन्यु को एक फोन देते हुए कहा, कुंवर सा, ये आपके लिए बहुत जरूरी फोन है, इनसे बात कर लीजिए। अभिमन्यु कियारा की पूरी बात नहीं सुन पाया। उसने कियारा को रोकते हुए कहा, एक मिनट कियारा, हम पहले ये फोन अटेंड कर लेते हैं। कियारा चुपचाप खड़ी हो गई। अभिमन्यु बात करते करते बाहर जाने लगा। कियारा उसे जाते देख उसके पीछे पीछे भागी। उसने अभिमन्यु को रोकते हुए कहा, भाई सा रुकिए, हमारी बात सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? अभिमन्यु ने फोन पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अरे बहुत जरूरी काम है, हमें जाना पड़ेगा, हम आपसे वापस आकर बात करते हैं। और आप तो जानती हैं ना कि शादी की तैयारी में हम कितने ज्यादा व्यस्त हैं। इस समय हमारे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। ये सुनकर कियारा तेज आवाज में चिल्लाई, नहीं भाई साहब, मगर आपको मेरी बात सुनने के लिए समय निकालना होगा। कियारा को इतनी जल्दी देखकर अभिमन्यु ने अपना फोन जेब में रखते हुए कहा, हाँ हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। जैसे ही शादी की सारी तैयारियां हो जाएंगी, हम आराम से आपके पास बैठकर आपकी बात सुनेंगे। इतना बोलकर अभिमन्यु जाने लगा। कियारा ने मन में कहा, लेकिन अगर आपने मेरी बात यूं ही अनसुनी की तो शायद तब तक बहुत देर हो जाएगी। कियारा ये बात मन में बोल ही रही थी कि उसने धीरे से नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं अभिमन्यु भाईसा को अभी मेरी बात सुननी होगी। कियारा तेजी से अभिमन्यु के पीछे भागी। वो उसके करीब आकर उसे रोकते हुए बोली, अभिमन्यु भाईसा रुकिए, आपको हमारी बात सुननी होगी। अभिमन्यु कियारा की आवाज सुनकर रुका। वो पीछे मुड़कर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? हमने कहा ना, हम शादी की तैयारी करने के बाद आपसे आराम से बात कर लेंगे। कियारा ने गुस्से से कहा, भाईसा अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो आपकी शादी, जिसके लिए आप इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, वो शादी नहीं हो पाएगी। ये सुनकर अभिमन्यु हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। ये क्या बोल रही हैं आप कियारा? कियारा ने कहा, बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ मैं भाईसा, इसलिए रुकिए और हमारी पूरी बात सुनिए। कियारा को इतना परेशान देखकर अभिमन्यु उसके पास आया और उसने कियारा का हाथ पकड़ते हुए कहा, बोलिए क्या बात है। कियारा अभिमन्यु को सारी बात बताने लगी। इप्सिता नंदिनी के साथ अपना सारा सामान पैक कर चुकी थी। सामान पैक करने के बाद वे दोनों बहुत थक गई थीं। तभी उदय आया। उसने नंदिनी और इप्सिता को थका हुआ देखकर कहा, क्या बात है, आप लोग इतनी ज्यादा थकी हुई क्यों लग रही हैं? इप्सिता बोली, हाँ भाई हम ठीक हैं, बस थोड़े से थक गए हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। उदय ने इप्सिता की बात सुनी और नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी भी आराम से बैठी हुई थी। उदय ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों की थकान उतर जाएगी, बस हम थोड़ी देर में आते हैं। इतना बोलकर उदय कमरे से बाहर चला गया। इप्सिता उदय की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। नंदिनी को बात समझ नहीं आई, उसने इप्सिता से पूछा, क्या बात है, तुम इस तरह क्यों मुस्कुरा रही हो? इप्सिता ने धीरे से नामे सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद उदय अपने हाथ में दो मीडियम साइज पिज्जा और तीन कोक के कैन लेकर इप्सिता के कमरे में आया। उसने उन्हें टेबल पर रखते हुए कहा, अब उतरेगी आप दोनों की थकान। उन दोनों ने जैसे ही पिज्जा और कोक देखा, दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, पिज्जा और कोक, थैंक यू सो मच भाई।
इप्सिता इतना बोलकर उठकर बैठ गई। उदय ने कोक का कैन खोला और एक एक करके पहले इप्सिता और फिर नंदिनी को दिया। फिर वे तीनों कोक और पिज्जा खाने लगे। अगले दिन सुबह वे सभी होटल पहुंच गए थे। होटल हल्दी के फंक्शन के लिए तैयार था। चारों तरफ अच्छी सजावट की गई थी। इप्सिता के माँ बाप सजावट देखकर बहुत प्रभावित हुए। वैसे एक तरह से देखा जाए तो रानीसा ने बहुत अच्छा किया ना, जो सारे फंक्शन होटल से ही करने को बोल दिया, इप्सिता के पिता ने कहा। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वैसे भी अगर हम अपने घर से सारे फंक्शन करते तो पता नहीं कितना पैसा लगता, कम से कम थोड़ा बहुत पैसा तो बच ही जाएगा। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई। उन्होंने देखा तो वहां अर्पिता खड़ी थी। अर्पिता इप्सिता की माँ के पास आकर बोली, गुड मॉर्निंग आंटी। अर्पिता को देखते ही इप्सिता की माँ ने उसे गले लगाते हुए कहा, अरे अर्पिता बेटा आप यहाँ, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अर्पिता ने दरवाजे से अंदर आते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ आंटी सब ठीक है, मैं तो बस आपको ये बताने आई थी कि हम भाई की हल्दी दोपहर के 2 बजे कर रहे हैं, तो आप भाभी सा की हल्दी 3 बजे के बाद करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ की रस्म है कि पहले दूल्हे की हल्दी लगती है, उसके बाद दुल्हन को दूल्हे की ही हल्दी लगाई जाती है। ये बात सुनकर इप्सिता की माँ ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, हम कुंवरसा की हल्दी लगाने के बाद ही इप्सिता को हल्दी लगाएंगे, वैसे भी अभी उसे तैयार होने में भी थोड़ा समय लगेगा। ये बात करने के बाद अर्पिता कुछ देर और वहां रुकी और फिर अपने कमरे चली गई। अभिमन्यु अपने कमरे में फोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी समर्थ उसके कमरे में आया और उसके बगल में बैठते हुए कहा, क्या बात है, तू इतना ज्यादा परेशान क्यों लग रहा है, सब ठीक तो है ना? अभिमन्यु ने धीरे से नामे सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। वो किसी का नंबर बार बार डायल कर रहा था। समर्थ ने उससे फोन छीनकर साइड टेबल पर रखते हुए कहा, आखिर बात क्या है, तू मुझे कुछ बताएगा अभी? अभिमन्यु समर्थ की बात सुनकर गुस्से और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। समर्थ समझ गया था कि कुछ बात है जो अभिमन्यु उसे बताना नहीं चाहता और इसीलिए वो इतना परेशान लग रहा है। अभिमन्यु कुछ बोल पाता कि उसके कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। समर्थ जो अभिमन्यु से कुछ कहने चाह ही रहा था, उसकी बात उसके मुंह में ही रह गई। वो दरवाजे की तरफ देखने लगा। क्रमशः